जय श्री कृष्ण। पवित्र स्थान गोवर्धनधारी भगवान श्री नाथ जी के चरणों में भगवान के मुख के वाणी भगवद गीता के श्रवण के लिए पधारे हुए सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। मंदिर संचालन के पदाधिकारियों का जिन्होंने ये सेवा का अवसर हमको दिया। चतुर वैष्णव संप्रदाय गाय के चार स्तन की तरह है और चारों स्तनों से बराबर का दूध आता है। गाय के चार स्तन होते हैं और सब स्तन से दूध निकलता है और वो अमृत है। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय मध्व आचार्य मध्व संप्रदाय, फिर निम्बार्क आचार्य की संप्रदाय, तो विष्णुवजन स्वामी में श्रीपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य की संप्रदाय और रामानुजाचार्य संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हैं। और इन चारों संप्रदायों के प्रवर्तक ब्रह्मा जी के द्वारा मध्व संप्रदाय संचालित है, लक्ष्मी जी के द्वारा श्री संप्रदाय विष्णुजन स्वामी की संवादित है, चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय संचारिक है और परम वैष्णव परम भागवत भगवान शंकर उनके द्वारा विष्णु स्वामी ये संप्रदाय श्री पाद महाप्रभु वल्लभाचार्य की संप्रदाय, इसको ये चार संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। और इन चारों संप्रदाय के आचार्यों ने भगवत गीता और भागवत के ऊपर अपने वैष्णव पद्धति से शिक्षाएं दी हैं। तो आज भगवत गीता जो मूल ग्रंथ है भगवान की मुख से निकली हुई वाणी होने के कारण गीता के माध्यम में ही लिखा है, सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। अगर सारे वेद शास्त्र गाय का रूप धारण कर लें तो गाय में मुख्य अमृत रतन दूध है, लेकिन गाय का दूध निकालने भी तो किसी को आना चाहिए ना। गाय का दूध निकालना जिसको आता है वो बुद्धिमान आदमी गाय का निकाल दूध सकता है। तो बोला ऐसी वेद रूपी गाय के दूध को निकालने वाला कौन है? बोला गोपाल नंदन दोगदा गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण सारे शास्त्रों के सार को दोहन कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि गाय दूध तब देती है जब उसका बछड़ा पास में आता है, वो वत्सला होती है, गाय को बोलते हैं वत्सला, वो अपने वत्स से बहुत प्रेम करती है। जब बछड़ा पास में आता है तभी गाय का दूध नीचे आता है, नहीं तो दूध नीचे नहीं आ सकता। आप गाय दूध निकाले जाए नहीं जाएगी, पहले बछड़े को ले जाएंगे, बछड़ा थोड़ा पिएगा तब दूध नीचे आएगा। तो जब तक, इसलिए एक शब्द भगवान के लिए है भक्त वत्सल, तो ये वत्सल शब्द जो आया है, वत्स कहते हैं बछड़े को। गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है, बछड़े को जन्म देती है, उसको चाटती है, चाट के साफ करती है मलमूत्र से, और वैसे गाय को अपने मूत्र से सना हुआ खाना तो नहीं खाएगी, लेकिन बछड़े को, और जहां बछड़ा जाएगा पीछे गाय चली जाएगी। तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, वो अपने भक्त के पापों को तापों को स्वयं धो के साफ कर देता है, और जहां भक्त जाते हैं वहां भगवान चले जाते हैं। तो भक्त जब तक नहीं कोई बनेगा तब तक भागवत का रस नीचे उतरेगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा रहस्य है इस श्लोक में। तो कौन बछड़ा कौन बना? पार्थो वत्स। अर्जुन का एक नाम पार्थ है इसलिए कि वो पृथा का पुत्र है, और भगवत गीता में सबसे ज्यादा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ के नाम से संबोधन किया है। पहले नंबर पे पार्थ के नाम से संबोधन किया है, दूसरे नंबर पे कौनसे के नाम से संबोधन किया है। और जब भी कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं तब उसके कंधे के ऊपर हाथ मार के जैसे कोई अपने बहुत निकट प्रेमी मित्र से बात करता हो या बेटे से बात करता हो, ऐसे बड़े प्रेम और स्नेह जब भगवान के हृदय में उमड़ आता है तब शब्द पार्थ का उपयोग करते पार्थो वत्स। अर्जुन जब बछड़े के अर्जुन मानो बछड़ा है तब गाय ने वेदम की गाय के दूध को भगवान श्री कृष्ण ने निकाला है और उसको दिया है। तो सिद्धांत यह है कि जब तक जीवन में भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक भगवान के शास्त्रों का अमृत उसका पान करना संभव नहीं। भक्ति के अमृत के पान करने के लिए इसलिए भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये परंपरा से ज्ञान तो आ रहा है, सूर्य देव ने को मैंने दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, परंपरा ऐसे चली। और फिर एकदम भगवान कहते हैं परंपरा ऐसे चली योगो नष्ट परम सकाले ने माता योगो नष्ट परम का बहुत बड़े काल बीतने के कारण ये योग नष्ट हो गया। भगवान अभी आपने कहा ये योग अव्यय है अविनाशी है फिर नष्ट कैसे हो गया। ये बड़ा दोनों श्लोकों एक दूसरे का बिल्कुल ऐसे जैसे पहले में कहते हैं योगम अव्ययम ये योग का ज्ञान मैंने दिया ये अविनाशी था और दूसरे श्लोक में कहते हैं योग नष्ट हो गया। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या कि वो संप्रदाया ही समाप्त हो गई, वो राज ऋषि ही नहीं रहे, वो शास्त्र को समझने वाले ही नहीं रहे। तो अर्जुन को तो जैसे चिंता हो गई क्या हमारे कुरु वंश में भरत वंश में कोई राज ऋषि नहीं हुआ। तो अर्जुन का चेहरा थोड़ा मुरझाया तब भगवान ने कहा समयात्याद्य योग प्रोक्त पुरातन स वही जो मैंने सूर्य देव को दिया अद्य आज वही आज योग पुरातन जो पुरातन असली जो योग है जो मैंने पहले दिया था आज मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। समयात्याद्य योग प्रोक्त पुरातन अर्जुन ने कहा मैं राज ऋषि। अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचंबित हो गया मैं राज ऋषि ये ज्ञान आप जो सूर्य देव को दिया मनु को दिया वो मुझे दे रहे ऐसी क्या विशेषता है। भगवान कहते हैं भक्तोसी क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवान के मुख से सीधा शब्द में भक्तोसी में सखा चैती रहस्यम है तद उत्तमम इस उत्तम रहस्य को तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। गीता में हृदयम भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में कि गीता मेरा हृदय है। भाई हृदय आदमी किसको देगा, अपना हृदय तो उसको देगा जो प्रेमी होगा, कोई जो प्रेम करेगा उसको हृदय देगा, सबको हृदय आदमी नहीं देगा। तो भगवान का हृदय अगर भगवत गीता है तो जो भगवान से प्रेम करने वाले भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन प्रेममयी सेवा भक्ति का पूरा अर्थ है। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। तो श्रीमद् भागवत में 18 अध्यायों की भगवत गीता को माता कहा गया अष्टादश अधा अध्यायनी अम्ब। अम्ब का मतलब माता, ये माता है 18 अध्यायों की। भव ये जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली है। जल स्नानम दिने दिने हम क्या कहते हैं क्या श्लोक है ये मल निर्मोचनम जल स्नानम दिने दिने सुकृत पेतांबति स्नानम संसार मल नाशनम। रोज शरीर को साफ करने के लिए स्नान करते हैं लेकिन एक बार गीता के अमृत में स्नान करे तो संसार के सारे मैल काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर सारे समाप्त हो जाते हैं। ये ऐसा अद्भुत साहित्य है। एक 45 मिनट से 50 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विचारधारा को बदल दिया। युद्ध भूमि में उस वक्त जब शंख बज चुके थे दोनों सेनाओं के, अब तो बाण चालू होने वाले थे, उसके बाद भगवान ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया, अर्जुन की मति को बदल दिया। यही गीता का सार है। हमारी मति क्या होती है हमेशा, मैं भोगता हूं, मैं एंजॉय करूं, मुझे जो ठीक लगे सो करूं, ये है जीव की मति। और भक्त की मति होती है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है वो करूं। ये बॉटम लाइन है जिंदगी की। ये एक बात समझ लो, भोक्ता भगवान है। पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, भोक्ता रम यज्ञ तपस्काम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांति मृच्छति। मैं भोक्ता हूं भगवान कहते, तो हम क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। और ये विज्ञान हमारे पढ़े लिखे दादा बाब नहीं थे, उन्होंने कोई एमबीए नहीं किया था, नहीं कोई उन्होंने बीए, लेकिन अपने बच्चों का नाम रखा था गोपाल दास, रामदास, धर्मदास। ये दास नाम क्यों रखा था, क्योंकि हमको पता लगे कि हम सेवा करने के लिए। वो सारे शास्त्रों का सार जानते थे। तो हमारा धर्म सेवा का है और भगवान भोगता है, हम सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव आत्मा का धर्म ही है नित्य भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहे, ये जीव का धर्म है। इसको भूलने के कारण हम क्या है? सेवक के बजाय भोक्ता बनने का भाव आ जाता है, वो हमारे संसार में बंधन का कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को पाप लगे, वो मेरे ऊपर केंद्रित था। और हमारे को एक आज एक शब्द जीवन में याद कर लो, जो भी काम करें अगर हमारे मन में ये हो, एक शब्द श्री कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, बहुत एक सिंपल जीवन में भावना आ जाए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। अर्जुन ने गीता के अंतिम में कहा, क्या कहा भगवान ने, क्या कहा, मैंने आपको गीता सारी बताई अर्जुन, अब इसके ऊपर ठीक तरह से विमर्श अशेषेण, अशेषेण का मतलब पूर्ण रूप से तुम अब इसके ऊपर बैठ के विचार विमर्श करो, यथा कुरुष जैसे तुम्हें चाहिए फिर वैसे करो। भगवान ने अर्जुन को कहा, सोच विचार के मैंने आपको शिक्षा दे दी, अब आप सोच विचार के वो करो जो आपको ठीक लगे। तब अर्जुन क्या कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तब प्रसाद आप अच्युत, अच्युत आपकी कृपा से अब मुझे याद आ गया, करिष्य वचनम तब, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूंगा। तो ये जो एक जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की आज्ञा क्या है वही काम करना है, तो हम सुखी हैं। हम अपनी इच्छा से जब भी कुछ करते हैं तो हमको कैसे पता लगेगा भगवान का क्या इच्छा है। इसलिए भगवान ने शास्त्र दिया है, भगवान की इच्छा क्या है वो शास्त्र हमको बताता है। शास्त्र माता है, शास्त्र माता है, वो हमारा पालन पोषण करके सद्मार्ग के ऊपर चलाना सिखाती है। तो भगवद गीता के 18 अध्यायों में 6-6 अध्यायों के 3 शतक हैं। जैसे हम यहाँ बाहर आते हैं तो दोनों तरफ ज्वेलरी के दुकान है ना, तो ज्वेलरी वालों के ज्वेलरी का बॉक्स होता है, वो बॉक्स बहुत सुंदर चमकीला होता है, ऊपर का ढकना चांदी का बना लो, नीचे का हिस्सा सोने का बना लो, लेकिन उसके अंदर जो माल होता है वो दोनों से कीमती होता है। ये ठीक है कि नहीं है? तो पहले 6 अध्याय ढकना है, लास्ट के 6 अध्याय बहुत सुंदर उसका पात्र है, कंटेनर है, लेकिन बीच के 6 अध्याय जो है वो हीरा मोती है। सभी अध्याय भगवान के मुख से निकले, लेकिन बीच के 6 अध्याय भक्ति के वाचक हैं। उसमें से भी 9 और 10 अध्याय को भगवान ने राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम, प्रत्यक्षा मतलब अभी हाथ के कंगन को देखना है तो आईने की जरूरत नहीं है, अभी इसी वक्त सुख ले लो। भगवत गीता जीते जी का शास्त्र है, अभी का है, मरने के बाद की बात नहीं है, अभी यहां इस वक्त भगवान का अनुभव कर सकते हो। अर्जुन को मरने के बाद भगवान ने गीता नहीं सुनाई, उधर ही युद्ध भूमि में कर्तव्य कर्म करने की गीता सिखाई। तो छह अध्यायों के तीन षटक हैं। इस वक्त यहाँ क्रम से चल रही है, जैसे हमारे को हमारे यहाँ कथा करने छठा अध्याय चल रहा है। छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। योग सबके साथ, गीता का नाम ही है योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। एक संसारी विद्या होती है, एक ब्रह्म विद्या होती है, आत्म विद्या या ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या वो होती है जो भगवान देता है और भगवान को जिससे जाना जाए और जिसमें हमारी पहचान हो और हमारा भगवान से संबंध क्या है इसका पता लगे, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो भगवद गीता ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। शास्त्र कैसा है? बोला योग शास्त्र है। योग शास्त्र का अर्थ क्या? भगवान से जोड़ने वाला शास्त्र। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, तो जोड़ना। तो योग मानो के एक सीढ़ी है। जैसे हम यहां से ऊपर जाते हैं, एक सीढ़ी होती है ना, कोई मंजिल, चार मंजिल बिल्डिंग हो तो जो सीढ़ी होती है उसका नाम योग है। उस सीढ़ी के ऊपर जितने पड़ाव हैं उन पड़ावों का अलग अलग नाम है। तो भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो सब में योग एक ही चीज है, योग अलग नहीं है। स्टार्ट इसका कहां है? एक कर्म के माध्यम से भगवान से जोड़ रहा है, एक ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ रहा है, एक ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ रहा है, एक भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ रहा है। तो ये चार स्तर हैं, ये स्तर हैं, लेकिन योग एक है। तो योग अलग नहीं है, योग एक ही है। ये उसमें स्तर है, कौन सा पिलर पे कोई आदमी खड़ा है। कर्म योग जैसे सामान्य, जो सामान्य व्यक्ति जिसको धर्म का पता नहीं है वो असल में पशु के स्तर पे है, वो पशु के स्तर पे है। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु भी समान है। वो सिर्फ खाना जानता है, सोना जानता है, बच्चे पैदा करना जानता है, अपना ताला लगाना चाहता है घर को, इतना जानता है। ये तो पशु भी करते हैं। धर्म अधिको विशेष, अगर धर्म जानता है तो वो मानव है, नहीं तो पशु के स्तर पे। तो पहले धर्म के अंदर शास्त्र में मंदिर में जाना, पूजा करना, तो उसमें देवी देवता की पूजा आ जाती है, तो वो भी शास्त्र में लिखी हुई है। इसको कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड का मतलब है वेदों के बताए हुए रास्ते से कुछ पूजा पाठ करना, उसके पीछे उद्देश्य होता है इस संसार में कुछ लाभ हो, पुत्र प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो, स्वस्थ की प्राप्ति हो, अथवा स्वर्ग जाने की इच्छा हो, उसको कर्म कांड कहते हैं। वो हो गया कर्म कांड का स्तर। ये भगवद गीता में कर्म कांड का एक आधी जगह पे थोड़ा सा उल्लेख है सिर्फ, क्योंकि कम से कम शास्त्र के अंतर्गत तो है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन कर्म योग, जहां योग शब्द आने का मतलब भगवान विष्णु से संबंध आ जाएगा। योग का अर्थ है भगवान से संबंध, नारायण से संबंध। तो योग शब्द आने, कर्म योग का मतलब काम मैं करूंगा उसके फल को। कर्म योग के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं सकाम कर्म योग, एक को कहते हैं निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब काम मैं करूंगा उसका कुछ फल भगवान को अर्पण करूंगा, कुछ फल मैं भोगूंगा। जैसे आपको किसी कंपनी ने नौकरी दी है तो आप नौकरी वहां कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट पत्तन, वो आपको कंपनी तनख्वाह दे रही है, लेकिन आपसे ज्यादा कमा रही है, जितना आपको दे रही है उससे ज्यादा कमाएगी तभी आपको रखेगी ना, ऐसे है कि नहीं है? तो हमारे कमाई के फल को कुछ भगवान को अर्पण करें, कुछ स्वयं भोगे, इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब है मैं काम करूंगा लेकिन फल भगवान को अर्पण कर दूंगा, सारा फल कर्म का भगवान को अर्पण कर दिया, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और गीता में निष्काम कर्म योग के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। लेकिन कर्म योग करते करते मन में आएगा किसके लिए कर्म कर रहे हैं, ये सब फल किसको दे रहे हैं। तो ये जब जानकारी बढ़ने लगे, जब कर्म योग में ज्ञान आ जाता है और थोड़ा वैराग आ जाता है। ज्ञान और वैराग कर्म योग में अगर जुड़ जाए तो आदमी ज्ञान योग में आगे बढ़ता है। तो कर्म योग में प्लस दो चीजें जोड़नी पड़ेगी, ज्ञान। जैसे आप किसी के लिए काम कर रहे हो कंपनी में, कंपनी वाले का मन में आ जाए कि इसका मालिक कौन है पता करें, तो मालिक के बारे में पता लगे, इसे तो दस और फैक्ट्री है, दस और जगह पे इसका कारखाना चलता है, तो आदमी को काम करते करते उसकी जानकारी करने की इच्छा होती है कि किसने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो ऐसे भगवान के विषय में जानकारी लेने का इच्छा हो, और जब भगवान के लिए जानकारी लेंगे तो थोड़ा समय जानकारी में लगेगा तो संसार से थोड़ा कम तो समय कम ही हो जाएगा ना। तो दो चीजें कर्म योग में जब जुड़ती हैं, ज्ञान और वैराग्य, तब आदमी ज्ञान योग के स्तर पे आता है। ज्ञान योग में विश्लेषण करता है कि संसार में जड़ क्या है और चेतन क्या है, हंस की तरह क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, ये ज्ञान की परिभाषा है। लेकिन ज्ञान योगी को पता तो लग गया कि भगवान कौन है, फिर उसका मन में आता है कि भगवान कैसा है मैं देख लूं, भाई हमारा मालिक जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो कैसे लगता है, जवान है बूढ़ा है, परिवार है कि नहीं है, ऐसा मन में भाव आ जाए कि भगवान, तो उसको कहते हैं ध्यान योग। जब भगवान को देखने की इच्छा हो जाए तो जब ज्ञान योग के अंदर थोड़ा बैठ के ध्यान लगा के हृदय में भगवान जो बैठा हुआ है, ज्ञान में ये पता लगता है कि भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है, तो फिर उसको देखने की जब इच्छा हो जाए उसको ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग में मन ही एक यंत्र है जिसको हमको ठीक करना है। ध्यान योग का साधन मन से होता है। मन के वृत्तियों के निग्रह को ध्यान योग कहते हैं, मनोवृत्ति निग्रह। जो मन की वृत्तियां बाहर जाती हैं उनको रोक के और अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने का अभ्यास करने को ध्यान योग कहते हैं। अच्छा, भगवान दिख भी जाए फिर हम देखें कि जैसे मालिक कंपनी का हमको दिख जाए, बहुत नौजवान है, फर्स्ट क्लास अच्छे इसके मित्र, लेकिन एक आदमी उससे हाथ मिला रहा है, एक आदमी उसके साथ बैठा हुआ रसगुल्ला खा रहा है, तो मन में आएगा देखा तो है लेकिन हम भी हाथ मिला लेते, रसगुल्ला खा लेते साथ में, ऐसे मन में भाव आ जाए तो ध्यान योग के बाद भक्ति योग का भाव आ गया कि भगवान से हाथ मिलाना अथवा भगवान का प्रसाद प्राप्त कर लेना, तो ये भाव आ जाए तो फिर एक स्तर और आगे बढ़ता है। तो ये योग एक के बाद दूसरा ऐसे आते, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग में भगवान के अपने शब्दों में कि वो परिकाष्ठा है योग की, वो शिखर है, जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट शिखर है, ऐसे योग का शिखर भक्ति है। क्योंकि भक्ति 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 स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति जैसे ज्ञान ऐसे जैसे दीप है, दीप में तेल है, बाती है तो रोशनी देगा, लेकिन भक्ति तो हीरे की तरह अपने आप उसमें चमक है, वो किसी ऊपर दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। और भक्ति स्त्री लिंग है इसलिए माया उसको छूती नहीं है, ज्ञान वो पुरुष लिंग है तो वो माया से बहुत आसानी से उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो भक्ति को परिकाष्ठा गीता के शब्दों में भगवान क्या मन सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है गीता का, गीता में तीन ज्ञान भगवान कहते हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य ज्ञान ये है कि शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा अमर है, भगवान का अंश है, शरीर हमको मिला है कर्म करने के लिए और मिला ही कर्मों के कारण है, और कर्मों के बंधन से छूटने का भी साधन ये शरीर है, ये हो गया गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान जैसे गुड़ से बेटर, गुह्यतर ज्ञान है सातवें और आठवें अध्याय में। उस ज्ञान में ये है कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, भगवान कितना महान है, और हमारा भगवान से कोई संबंध है, हमारा और भगवान का कोई संबंध है। तो ज्ञान सामान्य का अर्थ है जी आत्मा को जानना, शरीर को जानना, प्रकृति को जानना, भगवान को जानना, लेकिन भगवान के वैभव को जानना। चमत्कार है तो नमस्कार आदमी करता है, लेकिन गुह्यतम ज्ञान ये
नवे अध्याय और दसवें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान है। भगवान कहते हैं गुह्यतम का मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुह्यतम ज्ञान का जो मुख्य श्लोक दो बार भगवद गीता में आया है वो है मन मना भव मद भक्तो। ये सीधा भगवान कहते भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। ये भगवान का ये दो बार भगवद गीता में आया है, नवे अध्याय का आखिरी श्लोक और अठारहवें अध्याय का गुह्यतम ज्ञान। फिर दोबारा मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूं, तब फिर भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मन मुझ में लगाओ, अथवा मेरे मन वाले बनो, जो मेरे मन में वो करो, तेरे मन का मत करो, मेरे मन का करो, मेरी पूजा करो। असल में इसका अर्थ क्या है सही माना में? ग्यारहवें अध्याय का अंतिम श्लोक को कभी देखेंगे वो भक्ति का सूत्र है। ग्यारहवें अध्याय के आखिरी श्लोक को भक्ति का सूत्र कहते हैं, बारहवां अध्याय भक्ति योग है। बारहवें अध्याय में तीन बातें भगवान कहते हैं करो, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त। तीन करो, दो मत करो। तीन करो क्या? मत कर्म के काम मेरे लिए करो, शरीर से काम मेरे लिए करो, मत परमो मन से मुझे प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ, मद भक्त हृदय से मुझसे प्रेम करो। ये भक्ति का सूत्र है। मन शरीर से काम मेरे लिए करो, ये माता यशोदा जब दही मंथन कर रही है उसका अगर दर्शन करेंगे तो शरीर से कन्हैया के लिए दही मंथन कर रही है ना, पसीना निकल रहा है, इतना सारा उसमें परिश्रम हो रहा है, पसीना निकल रहा है, तो शरीर से क्या कर रही है? कृष्ण के लिए काम कर रही है। और मन में क्या चिंतन है? आज मेरे हाथ का बनाया हुआ मक्खन लाला खाएगा तो किसी के घर में क्यों जाएगा? गोपियां कहती है हमारे घर में मक्खन खाने आता है। आज मेरे हाथ का खाके देखे, मैंने प्रेम से कैसे रात से इस दूध को जमाया है, अभी मक्खन निकाल रही हूं, तो चिंतन किसका चल रहा है? कन्हैया का। और हृदय और गा क्या रही है? कृष्ण के प्रेम के गीत गा रही है कि ये लाला छोटा कितना शरारती हो गया, कहा था उसको कि तू अपने घर में हाथ में माखन क्यों लगा है? बोलता है तुम्हारे लाल कंगन जो तुमने डाले हैं ये पद्मराग के इतने गर्म होते हैं कि हाथ गर्म हो गया, इसलिए मटके में डाला है ठंडा करने के लिए। इतना होशियार होगा तो वो माँ को सब उसकी जो लीला है वो हृदय के ऊपर स्फुरित हो रही है। तो हृदय से प्रेम भगवान से करें, शरीर से काम भगवान के लिए करें, मन भगवान को पाने का लक्ष्य बनाए, इसको बोलते हैं भक्ति का सूत्र। अब हमारे जीवन को हम देखेंगे तो हम काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, मन जीवन का लक्ष्य है कुछ और प्रेम करते हैं अपने परिवार के, हम तीन जगह ऐसे टंगे हुए हैं। तो भक्ति का इसमें काम कैसे भगवान के लिए करें, कोई कहे तो कोई मुश्किल नहीं है, घर का मालिक भगवान को बना दो। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बुजुर्गों ने घर के अंदर लड्डू गोपाल बिठा दिए, ठाकुर जी घर में बिठा दिए, तो घर का मालिक कौन है? भगवान है। हम क्या है? तो हम घर के सेवक हैं। एक महाराज घूमते हुए किसी गृहस्थी के घर में गए, बहुत बड़ा विला, बड़ा बंगला, बहुत अच्छा था। अरे बड़ा अच्छा आपका घर है, बंगला है। बोला गुरुजी भगवान की देन है महाराज, वैष्णव की कृपा से, मेरा नहीं। बड़े अंदर फर्नीचर फिक्सचर, अरे बाबा आपका घर तो बहुत सुंदर है, इतना सारा फिक्सचर फर्नीचर। महाराज मेरा कुछ नहीं है, ये गोपाल की देन है, आप संतों की कृपा है। अरे परिवार तुम्हारा बड़ा अच्छा है, ये पुत्र है, ये तुम्हारा परिवार बड़ा आपका परिवार मर्यादा युक्त है। बोला महाराज ये भी आपकी देन है। और अंदर में मंदिर पड़ा था, भगवान ठाकुर जी बैठे थे। महाराज ने बोला आपका ठाकुर? बोला हाँ ये मेरा है, ये मेरा ठाकुर जी है, बाकी सब ठाकुर जी का है। बस ये कंसेप्ट अगर घर जीवन में आ जाए कि घर का मालिक, इसलिए घर में भगवान का मंदिर बनाने का अर्थ है घर में भगवान को बड़ा बना के बिठा दो।
सुबह उसको प्रणाम करके बोला हम आपके काम पे जा रहे हैं, शाम को काम करके आके उसको रिपोर्ट दे दो कि आज का आपका ऐसे काम हुआ, ये काम ठीक हुआ या हमसे कुछ त्रुटि हो गई, आप कल हमको बुद्धि दीजिए हम आपकी सेवा करें। ये भगवान के लिए, अगर अच्छा बाजार में जाते हुए देखो कि बहुत अच्छा आज मार्केट में आम दिख रहा है, आज तो भगवान को आम का भोग लगाएंगे। वो मन में पहले भगवान आ जाए कि उसके लिए नहीं जाते, तो उसको भोग लगाएंगे तो प्रसाद आपको मिलेगा ही। कोई भी चीज कहीं दिख जाए तो पहले भगवान के लिए याद आए। अभी हमारे को कुछ दिखती है तो या बच्चे के लिए याद आती है या अपने किसी परिवार के लिए याद आती है, बस उससे केंद्र भगवान को करना है। तो ये बहुत सरल सा साधन है। अगर जीवन में घर में भगवान का मंदिर बना दें और जो भोग घर में जो खाना है भोजन, उसको पहले भगवान को भोग लगाने और फिर प्रसाद करके खा लें, और प्रसाद खाने से पहले अगर परिवार बैठ के भगवान का थोड़ा सा गुणगान करके धन्यवाद कर ले कि आपने भगवान बड़ी कृपा की है, कितने सारे कलयुग में भी, इतने मुश्किल घोर कलयुग में भी हमको थोड़ा सा आपकी याद भी आ जाती है और आपकी सेवा का भी आपने अवसर दिया है और ये अमृत रूपी प्रसाद दिया है, इसको पाके हम धन्य हो गए। इतना ही भगवान को रोज धन्यवाद कर ले तो जीवन बहुत सरल हो जाए। दो ही काम करो, भक्ति शुरू होती है जीभा से। जीभा दो काम करती है भगवान का, एक या तो बोलती है या तो चखती है। जब बोलना है तो थोड़ी देर के लिए भगवान का गुणगान करना नहीं चाहिए, और जब कुछ चखना है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा लेना चाहिए। और ये जीभा मिड लाइन में है, ये फिर सबको कंट्रोल करती है, जो उपस्थ इंद्रिय आदि जितनी इंद्रियां हैं सबको, ये पेट सबको कंट्रोल कर लेती है। सिर्फ एक जीभा कंट्रोल हो जाए सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल जीभा को कंट्रोल करना है। ये है छोटी, इतनी जबान छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक है, ये बहुत बहुत टेढ़ी है। तो एक तो महात्मा ने कहा जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। ये चमड़ी का टुकड़ा किस काम का है मुख में अगर राम राम नहीं जपती है तो इस जीभा का सदुपयोग करना चाहिए भगवान के नाम का। आज के श्लोक जो आज का नेम से था वो दसवां श्लोक छठे अध्याय का, उस श्लोक का वो श्लोक है। भगवान कहते हैं कि अगर योग ध्यान योग करना है तो उसका साधन कैसे किया जाए। साधन, उस साधन का ये सेक्शन जो है, ये साधन का सेक्शन है। योगी युंजत सततम, योगी लग जाता है सदा के लिए आत्मानाम, अपने अंदर में आत्म साक्षात्कार के कार्य में। रहसी एकांत में जाके, बाजार में नहीं लग सकता है, ध्यान एकांत में होता है। ध्यान कहाँ होता है? ध्यान करने के लिए पहले लोग हिमालय में जाते थे, गंगा जी के तट के ऊपर ध्यान करते थे। ध्यान बाजार में नहीं हो सकता है, मार्केट में नहीं हो सकता है, इसलिए रहसी शब्द है। रहसी का मतलब एकांत में जाके ध्यान करें और स्थित, ऐसी स्थिति हो। एकाकी चितात्मा निराश्री अपरिग्रह, एकाकी चित आत्मा, ये जो हमारा चित्त जो मन है उसको एकाग्र करने लेना चाहिए। और क्या चीज मन में आ जाती है? बोला संसार आ जाता है। बोला उसको परिग्रह करे, उसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। निराश ही, किसी और का आशय मत लो, भगवान का आशय लो। फल कल खिलाएगा कौन मेरे को, ये चिंता करोगे तो भगवान याद नहीं आएगा। तो निराश ही। और इसके बाद कहते हैं आसन कैसा होना चाहिए, दूसरा श्लोक। आसन न ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए, आसन किस तरीके से, फिर बैठना कैसे चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, ये योग के अभ्यास का मार्ग बता रहे हैं। आश्चर्य आपको लगेगा, जब छठा अध्याय पूरा होने को आएगा तब अर्जुन कहेगा मुझसे लिया ध्यान होएगा ही नहीं। अर्जुन भगवान कहता मैंने आपको सारा अध्याय दिखा दिया। अर्जुन कहेगा असंख्यम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन। अर्जुन कहता हे भगवान ये योग मुझसे होगा नहीं। अरे आपसे योग क्यों नहीं होगा? बोले इस मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, ये तो हवा तेज को रोकने से भी ज्यादा कठिन है इसको रोकना। फिर भगवान का अभ्यास करो, वैराग का सहारा लो। अभ्यास है न तो कौन थे वैराग है न सुग्रीत। तो ये बहुत मुश्किल है वैसे मन को ऐसे वश में करना। तो अर्जुन आगे, अर्जुन जो भगवान का सखा था
द्वापर युग था और बहुत संपन्न व्यक्ति था, वो भी इस ध्यान को करने में अपने आप को असमर्थ मानता है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं, क्या पता है कौन से श्लोक पे उसने कहा नहीं? आत्मोपमेयेन सर्वत्र योमाम पश्यति, भगवान ने कहा अपने से उपमा देके, अपने से कंपेयर करके, जो तुम्हें दुख देगा वो दूसरे को दुख देगा, तुम्हें सुख देगा दूसरे को सुख देगा। अर्जुन कहता है मैं दुर्योधन का सुख और युधिष्ठिर का सुख बराबर कैसे मानूं? मेरे लिए तो मैं तो युधिष्ठिर को सुखी देखना चाहता हूँ और दुर्योधन को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, ये दोनों बराबर मैं कर ही नहीं सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मानू कर लू, लेकिन जीवन में ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा फिर तुम ये योग का अभ्यास नहीं कर सकते, ये तुम्हारे से हो नहीं पाएगा। तब भगवान ने उसको कहा ठीक है तुम वो करो जो मेरा शरण ले लो। तो ये आगे गीता में आगे आएगा। तो अभ्यास अगर ध्यान का भी करना है तो एकाग्र जगह पे बैठ के करना चाहिए, एकांत में बैठ कर करना चाहिए, उसकी भी अपनी मर्यादा सिद्धि है। ये जो योग है भगवद गीता के छठे अध्याय, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इसके 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग है। यम का मतलब नहीं करना, जो करने करोगे तो यम लोग जाओगे, इसका अर्थ ये। यम का अर्थ है जो नहीं करना चाहिए, अगर किया तो यम दूत के पास जाना पड़ेगा। और नियम का मतलब जो करना चाहिए, जो पालन करना चाहिए। 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, ये कोई नहीं बताता है इस योग के। आसन होता है शरीर को स्थिर करने के लिए, और प्राणायाम होता है मन को एकाग्र करने के लिए, और उसके बाद आएगा प्रत्याहार, मन को बाहर की वस्तुओं से हटा के अंदर लाना। उसके बाद आता है ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि। आजकल योग के नाम में केवल दो ही चीज कहते हैं, आसन प्राणायाम। न यम है न नियम है, न ध्यान है न धारणा है। तो दोनों काय के लिए योग करते हो? भगवान का ध्यान करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, फिर काय के लिए? थोड़ा स्वस्थ ठीक हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर भोग करेंगे। तो ये योग तो नहीं हुआ, ये तो भोग हुआ। तो ये योग का अर्थ तो नहीं, तो ये भगवद गीता के योग का अर्थ नहीं है। असल में यम नियम भी बहुत जरूरी है। तो ये साधन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है जीवन में। हम क्या कर सकते हैं, वो सबसे सरल है, मुख से भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान के प्रसाद को आनर कर सकते हैं। तो आनर करने का मतलब भगवान के प्रसाद को सम्मान से ग्रहण कर सकते हैं। तो 2 मिनट भगवान के नाम को लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।